राम सेठ जी के पेट पड़े हुए प्रवचन चातुर्मास रामधाम सिंथल में 2015 में आचार्य श्री 1008 महंत श्री श्यामा राम जी महाराज के मुखारविंद से राम।
आय राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सेठ जी बता रहे हैं कर्णवास में कई कई बार विशेष बातें हृदय में पैदा होती हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की ये भावना होती है, उसमें प्रधान निमित्त कारण सुनने वाले हैं, जैसा वातावरण होता है वैसी बात चलती है। हम चरखी दादरी में गए, बहुत जबरदस्ती से समय निकाला, चरखी दादरी में एक घंटे में इतनी ऊंची बात हुई कि वैसी बात कहीं नहीं हुई, बड़े मार्के की बात हुई ऐसा वे बोले, और हमारा समय निकलना मुश्किल हो गया। सारे जीवन की बात एक घंटे में आपने सुना ली ऐसा लोग बोले। कहीं कहीं पर हम बहुत ऊंची बात बोलते हैं तो लोग को पल्ले नहीं पड़ती। अब चरखी दादरी में हमारे कोई विशेष बातें हमारी दृष्टि में नहीं निकली, लोगों को बड़ी अच्छी लगी, तो सुनने वालों की प्रधानता है। इसलिए मैंने तो ये मान लिया कि जब सुनने वालों को लाभ होता है यही मेरा लाभ है, मुझे तो फिर ज्यादा लाभ होना चाहिए। तो राजा जी ने पूछा कि चरखी दादरी में ऐसी क्या बात थी जो आपको वहां नहीं लगी हो, ऐसी साधकों को लगी आपको नहीं लगी, आप तो बहुत जानते हैं इस विषय में। आप जी महात्मा पुरुष की बुद्धि में भी भगवान की सारी बात नहीं आ सकती। जैसे कोई आकाश को अपने कांच में लेना चाहे तो नहीं आ सकता, कांच सामने रख लो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है पर कितने का आकाश का। ऐसे ही महात्मा की बुद्धि में जो बात है वो दूसरों के समझाने के इतने विकल्प तैयार नहीं कर सकते कि वे लोग सुनाने वाले उनके अंदर पूरी समझ भर सके, ऐसा हो नहीं सकता है। कारण कि जितनी मन में समझाने की शक्ति है उतनी हाव भाव में नहीं है। हाव भाव में जितनी बात आती है उतनी सब सुनने वालों को पकड़ में नहीं आती। सुनने वालों में भी लोग कहते हैं क्या बताऊं, मैं सुन ही नहीं पाया। फिर जितनी सुनी उतनी मन में पकड़ी नहीं गई, और जितनी बात को पकड़ी है उतनी बुद्धि में स्थिर नहीं रही, बुद्धि में उतनी धारणा नहीं हुई। आत्मा में जो धारणा हुई वो लाभप्रद है, जितना सुना उसका कितना सा अंश धारण हुआ, जहां से चली है बातें वहां की तो फिर बात ही कितनी होगी। एक बात बहुत महत्व की बताएं, कहीं नहीं लिखी हुई ऐसी बात, ऐसी ऐसी परमात्म संबंधी जहां बातें होती हों और वहीं पर एकदम कोई तलवार चलने लगे तो हृदय में एक बेपरवाही आती है कि भले ही चलो ये बातें नहीं छोड़े, कह रहे तुम्हारा तलवार से सिर कट जाएगा भले ही कटो। तलवार चलने की भी परवाह नहीं करेगा, उसे तलवार का प्रहार दुखदायी नहीं होगा, ये इतना सत्संग का प्रभाव सत्संग के अंदर देखा जा सकता है। इस प्रकार की बातें करते रहे हर समय, ऐसा कोई आप लोग उपाय बताओ। मैं भी चाहता हूं कि हर समय बस इसी चर्चा में समय निकले। अरणी की लकड़ी में आग है परंतु आग पैदा नहीं होती, घर्षण से पैदा होती है। राजा जी ने प्रश्न किया कि ये बात तो अरणी वाली तो ठीक है, पर आपने कहा कि सत्संग चलता है और सुनने वाले खूब मस्त रहते हैं, उस समय तलवार से कोई हमारा वदन काटे शरीर काटे तो दुख नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं आई। तो आप जी ने उत्तर दिया, सेठ जी ने बड़ी मार्मिक बात, सत्संग के अंदर जब मन के अनुकूल बातें होती हैं तब सुनने वाला सुनाने वाला सब बड़े तन्मय हो जाते हैं, उस समय उनकी अपने शरीर में स्थिति नहीं रहती है। जैसे गहरी नींद में आए या सूंघनी सुंघाते समय शरीर को काटा जाए तो कुछ असर होता है क्या? नहीं होता। इसी प्रकार से सत्संग की बातों में जब हमारा मन एकदम सत्संगाकार हो जाए, तदाकार हो जाए, तन्मय हो जाए तो फिर बदन कटने से कोई दुख नहीं होता। तभी तो भगवान ने कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार्यते। अब आप सोचो ये तो साधन अवस्था में ऐसा आनंद है कि उसका रस का वर्णन समझ में नहीं आता, उसका वर्णन कर नहीं सकते। फिर जब सिद्ध पुरुष या परमेश्वर का जो रसमय आनंद है उनके अंदर कितना रस है उसको हम कैसे जान सकते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त तो आनंदमय को भी आनंद देने वाला है। भगवान कहते हैं मैं आनंद स्वरूप, मेरे आनंद की सीमा नहीं, लेकिन भक्त जब मिलता है तो मेरा आनंद बढ़ता है। अब कहां बढ़े वो भगवान जाने। राजा जनक को भी ऐसे ही भगवान का प्रेम का रस हो गया। रामचंद्र जी को देखकर जनक जी ऐसा हो गया। इन्हीं विलोकित अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कैसी अनोखी बात। चंद्रकांत मणि तो एक पत्थर है ना, चंद्रकांत मणि तो एक पत्थर है ना, वो चांदनी रात में अमृत बहाने लगती है। अब देखो पत्थर होते हुए भी अमृत का रस झरता है, जड़ वस्तु भी द्रवीभूत हो जाती है। ऐसे चंद्रमा तो है भगवान और चंद्रकांत मणि है महापुरुष। महात्मा में जो भाव है कि प्रेम रस का द्रवी भाव किस प्रकार होता है, तो ये तो पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तभी तो होता है। विज्ञान आनंद घन ब्रह्म में तो मन बुद्धि हृदय आदि तो प्रकृति का कार्य है। महात्मा पुरुष में कोई प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, सो ये विकार थोड़ा ही है। महात्मा का परमात्मा में जो प्रेम होता है ये प्रेम विकार वाला नहीं है। तो फिर क्या है कि ज्ञान की दृष्टि से कुछ नहीं है, भक्ति के सिद्धांत से ये परमात्मा के स्वरूप की एक झलक है। झलक क्या है, परमात्मा का स्वरूप ही है। भक्ति ज्ञान आनंद ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। पहले भगवान वाणी से अतीत होते हैं, फिर ज्यों ज्यों उनमें हमारा मन तल्लीन होता है त्यों त्यों हम वाणी से थोड़ा थोड़ा कहते हैं। आनंद घन है, आनंद घन है, तो ये सगुण हो गया। बुद्धिग्राही है तो सगुणी है, और जब विशेष रूप से प्रेम प्रकट होता है तो फिर एक हृदय में प्रकाश होता है और फिर उसमें और ज्यादा प्रेम होता है, तो फिर उसके भाव के अनुसार भगवान साक्षात उसको दर्शन देते हैं। प्रकाश के भी दो भेद हैं, जैसे किरण और सूर्य। स्थूल तो सूर्य है, सूक्ष्म किरण है। किरण तो सूर्य की अपेक्षा निराकार है, चेतनता है परमात्मा की, वो भी खास स्वरूप है। भक्त्यानुकूल भक्त्या तो आनंदया शक्यम, भक्त्या भक्ता भक्त्या तो भक्तात्मनन्यया शक्य है। गलत लिख दिया है, चलो भक्त्यात्मनन्यया शक्य शक्य अहम एवं विदुर्जुन। ज्ञान की सात्वी भूमिका में सगुण का दर्शन नहीं होता है, और भक्त में भगवान आते हैं तो खास रूप में आते हैं। जो उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है वो सब में नहीं होता, सगुण के तो होता है पर निर्गुण में नहीं होता। पर द्रवीभूत सभी को नहीं होती, जहां संसार है वहां विकार है, जहां संसार नहीं है वहां विकार नहीं है, जहां हर्ष है शोक है वहां अनुकूलता प्रतिकूलता ही परिस्थिति दुख के अंदर बदल जाती है। भीतर में जब हर्ष का भाव होगा तो अनुकूलता सुख में बदल जाएगी, और हृदय में शोक का भाव होगा तो प्रतिकूलता दुख में बदल जाएगी। नारायण नारायण का सत्संग 6-4-38। राजा जी ने कहा, प्रेम वाली जो बात आप अभी बताए थे सुबह, ये दोपहर का सत्संग है, वो पूरी गले नहीं निकली, समझ में नहीं आए। अभियान दिया है सेठ जी, भगवान जो है, प्रेम जो है, वो एक प्रकार से विकार नहीं है, भगवान का स्वरूप है। सगुण साकार रूप जो है वो कोई भगवान का विकार नहीं है। जो कुछ आप ये पदार्थ देखते हो, पांच भूत वगैरह, ये प्रकृति का विकार है। किंतु भगवान के जो अवतार होते हैं, भगवान जो अवतार लेते हैं, वह पंचीकरण का अवतार नहीं है, वह तो स्वरूप का चिन्मय स्वरूप है। भक्ति की दृष्टि से अलग विचार करना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से अलग विचार करना चाहिए। ब्रह्माकार रचा हुआ प्रपंच ये विकार है। ब्रह्मा की दृष्टि से भगवान अलग है। जिस समय ब्रह्मा जी बछड़े चुरा ले गए तो उनके रचे हुए थे सो ले गए। बाद में भगवान जो अपने रूप से बछड़े बने थे, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि की वस्तु ही नहीं। जिनको सच्चिदानंद कहते हैं, उनका सगुण स्वार स्वरूप वे स्वतः खुद ही हैं, वे अलौकिक हैं, अप्राकृत है, अद्भुत है। वस्तुतः जब ये निर्गुण है तो जैसे मनुष्य में तीन गुण दिखते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी प्रकार भगवान अवतार रूप से प्रकट होते हैं। उनको हम ज्ञानमय कहते हैं, वे ज्ञान के प्रकाश के रूप में आते हैं। परमात्मा में जो ज्ञान प्रकाश दिखता है, यही चिन्मय है। चिन्मय माने ज्ञान। और कृष्ण है वो मुरली मनोहर के रूप में, विष्णु हो तो शंख चक्र आदि के रूप में, वह भगवान रस रूप में, आमोद प्रमोद रूप में आते हैं। वे प्रेममय है, वो रसमय है। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप आनंद घन रूपी था। लोगों जैसा पांच भौतिक देह नहीं था। प्रकट और तिरोभाव पांच भौतिक देह से नहीं होता है भगवान का। हमारा शरीर छूट जाए तो आत्मा का तिरोभाव नहीं होगा। भगवान का शरीर अलौकिक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे संस्कार में जो आयुध है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम तलवार हैं। भगवान के आयुधों को ज्ञान है, क्योंकि वे चेतनावान हैं। हमने जिनको शस्त्र आयुध समझ रखा है, उन शस्त्रों के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि हम तलवार हैं, कि हम भाला हैं, कि हम फरसा हैं, कि हम क्या है, ये उनको शस्त्रों को मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर भगवान के जो आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म मुरली जो भी कुछ है, उन सबको ज्ञान है। प्रभु का सारा स्वरूप चिन्मय है। इस बात की साक्षी के लिए देवकी के यहां चतुर्भुज रूप प्रकट हुए और फिर बालक बन गए। अब बताओ, चतुर्भुज रूप की लाश वहां मिली थी क्या? नहीं मिली, नहीं बनाई जा सकती। तो तिरोभाव और प्रकट भाव भगवान का ही होता है। हमारे को जैसे त्वचा का ज्ञान है, किंतु हड्डी आदि में चेतना नहीं है, और भगवान का शरीर ही आत्मा है, पांच भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए भगवान की हमारे के साथ कहीं तुलना नहीं होती शरीरों के साथ। युद्ध के समय भगवान कृष्ण घोड़े आते थे, अर्जुन ने कहा मुझे तो विराट रूप दिखाओ, विश्व रूप दिखाओ, तो वह अलग कोई रूप नहीं दिखाया है। ये जो घोड़े वाले लगाम वाले जो भगवान थे वो तो अलग हो गए, और विश्व रूप भगवान को अलग दिखाया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने कहा मम देह गुड़ाकेश, अरे गुड़ाकेश मेरे शरीर में देख। भगवान जिसको दिखावे वैसे ही दिखते हैं। भगवान ने जो बात अर्जुन को दिखी, भगवान में जो बात अर्जुन की दिखी, वह सेना में किसी को नहीं दिखाई दी, अर्जुन को ही दिखाई दी। अरे विराट रूप बना है, इतना विशाल रूप, तो उसको तो भीष्म जी भी देखते, द्रोणाचार्य जी भी देखते, कृपाचार्य जी देखते, युधिष्ठिर जी देखते, वहां तो बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष भगवान के भक्त थे, उन सबको दिखाई नहीं दिया, अर्जुन को ही क्यों दिखाई दिया? क्योंकि विश्वरूप की प्रार्थना अर्जुन ने ही की थी। और फिर अर्जुन ने कहा नहीं मरा तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, तो भगवान उसी क्षण दो भुजा वाले हो गए। ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि है, अपने आधार का संसार नष्ट नहीं होता। स्पष्ट की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न है, कल्पना मात्र है, इसके नाश से ब्रह्मा की सृष्टि का नाश नहीं होता। जीव की सृष्टि क्या है? ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ, ये है जीव की सृष्टि। इसके नाश होने से ये ब्रह्मा की सृष्टि का नाश नहीं होता। ब्रह्मा की सृष्टि से स्वप्न संसार का नाश नहीं होता, किंतु भगवान का स्वरूप चिन्मय है, चाहे जिस रूप में परिवर्तन कर लो, पर सत में कोई विकार नहीं होता है। परिवर्तन होना अलग है, विकार होना अलग है। ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है, प्रेम है, उसमें कोई विकार नहीं होता। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन कहा और हो गए। भला बताओ विराट रूप कहां गया? कौन ले गया? कहां चला गया? आकाश में गया? पाताल में गया? किसने देखा? वो भगवान में ही था, भगवान में ही प्रकट हुआ। यह हमको प्रादुर्भाव दिखता है, तिरो भाव में अदृश्य हो जाते हैं, वे निर्दोष हैं, विकारी नहीं है, अनामय है, अपने में रोग वगैरह नहीं होते, आत्मा में, शरीर में होते हैं। आत्मा में जैसे रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता, तो निराकार में निर्विकारता रहती है, तो भगवान चिन्मय और चेतन है। आज क्यों बंद किया भाई? आज तो गर्मी है। भगवान सब जगह मौजूद, निराकार से नहीं साकार से भी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। इसका कितना अच्छा उदाहरण है कि जब भगवान अनेक रूप से आप ही ग्वाल बाल बन गए, बछड़ा बन गए, ब्रह्मा जी इसलिए ले गए कि सच्चे भगवान होंगे तो फिर बना लेंगे और झूठे ढोंगी होंगे तो रोवेंगे। ये ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी, लेकिन यहां पोल निकल गई खुद ब्रह्मा जी की। फिर जब वापस लेकर आए तो बनाए हुए बछड़े और ग्वाल बाल सब गायब हो गए। बलराम ने देखा कि प्रेम क्यों अधिक हो रहा है लोगों में, तब पूछा। प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी बछड़े ले गए सो मैं ही सब कुछ बन गया। अब तो बलराम जी को लाठी वगैरह जड़ वस्तु में भी भगवान कृष्ण दिखाई देने लगे। भगवान का प्रकट होना ऐसे ही होता है। प्रश्न, योगियों में भी तो ऐसी बात देखी जा सकती है ना सेठ जी? सेठ जी बोलते हैं, योगियों का जो स्वरूप होता है वो माइक होता है, ईश्वर का जो स्वरूप होता है वो चिन्मय होता है, स्वतः चिन्मय। योगी माया से एक शरीर से दूसरी शरीर तक जाता है, दूसरी जगह उपस्थित हो, वहां भी रहता है, वहां भी रहता है, वहां भी रहता है, वो माया है। थे तो योगी की बात करो, योगी की बात तो के राक्षस भी कई रूप बढ़ा सके। रामायण में आवे कि इंद्रजीत मेघनाद भी माया को रूप बढ़ाकर युद्ध रामाय ने कितना रूप बढ़ाया, पर वे माइक। लेकिन भगवान को जो रूप हुए वो एक प्रकार से थी सत्य हुए, माइक नहीं। उनकी वस्तु का विनाश नहीं, उनका स्वरूप संकल्प मात्र से तत्काल वैसा बन जाता है और वो वापस भगवान में तिरोहित हो जाता है। हमारा जो देह का रूप है, वो देह का रूप हम न तो प्रकट कर सकते हैं और न उसको हम अपने में तिरोभाव कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण इसी शरीर से परमधाम पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जो भक्त कृष्ण की बातें सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, तो वे उसका ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे तो ध्यान में लाने के लिए उन्होंने ये श्री विग्रह प्रकट किया, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो भगवान का स्वरूप अविनाशी हुआ। भगवान अविनाशी होकर मनुष्य बने, फिर कहते हैं असल में मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो आवश्यकता के अनुसार ही प्रकट होता हूं। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष आनंद की मूर्ति है, यह उनकी दिव्यता है, अलौकिकता है। कोई योगी हो या बाजीगर हो या राक्षस माया की प्रतीति हो तो हो जाएंगी, किंतु वस्तुतः वह कोई वस्तु होती नहीं। राम जी ने बाण छोड़ा तो मेघनाद की माया नष्ट हो गई, रावण की माया नष्ट हो गई। वराह भगवान के साथ में हिरण्याक्ष ने युद्ध किया, बड़ी माया फैलाई। भगवान ने उस समय अपने शस्त्र को, सुदर्शन चक्र को याद किया और उसने सब माया का नाश कर दिया। योगी की माया ये तो एक तरह से जड़ है, नाशवान है, कोई ऊंचे दर्जे की नहीं है। भगवान की जो माया, भगवान का जो स्वरूप, वो चिन्मय अविनाशी है। क्योंकि पांच भूतों से बना हुआ नहीं है। योगी का हाड़ मांस से बना हुआ शरीर होता है तथा योगी कायम सदा रह नहीं सकता है, अपने शरीर को रख नहीं सकता है। भगवान से शरीर अदृश्य हुए, पीछे लोगों के लिए शरीर छोड़कर नहीं गए। ऐसे ही राम जी साकेत धाम में पधारे, सशरीर पधारे। है कोई ऐसा योगी जो शरीर से ही चला जाए ऊंचे लोक में? नहीं। योगी का वह संकल्प है और भगवान का वह स्वरूप है। मान लो राक्षस ने रूप धारण किया और यदि उसको मारो तो उसके साथ वो माइक रूप भी जल जाएगा। मार दिया, सीधी बात है, मारीस था, हिरण बन करके आया। भगवान ने बाण लगाया तो वो अपने उसी रूप में आ गया जो रूप उसका था। माया से वो हिरण बना, लेकिन भगवान का बाण लगते ही उसकी माया खत्म। तो ये पार्थिव शरीर है, माया से बड़ा छोटा बना लो, परंतु भगवान से बिल्कुल भिन्न है। पांच पुत्रों से संबंध करके ये चाहे सो कर लेते हैं माया के द्वारा। भगवान में भी तो योग की विद्या तो है ही, किंतु अलौकिक है। वह ब्रह्मा विष्णु को भी मालूम नहीं है। शिव विरंची को मोही को है बपुरा आन। जब भगवान की माया में शिव ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसी अद्भुत लीला है। ये बात योगियों में थोड़ा ही हो सकती है। खूब बड़े बड़े लेख हैं कर्णवास में, एक एक लेख इतना बड़ा।